ओम शांति। एक बार एक राजा किसी अपने ही एक गांव में घूम रहा था, तो उसने देखा कि उसके शर्ट की एक बटन टूट गई है। तो उसने मंत्री से कहा कि इस गांव में ढूंढो, देखो कोई दर्जी है क्या जो कि मेरी शर्ट की बटन जोड़ दे, ठीक कर दे, वापस सी दे। उस गांव में एक ही दर्जी था और मुख्यमंत्री उस दर्जी को लेकर आता है। राजा उस दर्जी से कहता है कि आप मेरी इस कमीज की बटन को लगा देंगे? वो कहता है कि क्यों नहीं, ये तो मेरा भाग्य है कि मैं आपकी कमीज की बटन को लगा दूं, मैं तुरंत लगा देता हूं। और वो दो मिनट में कमीज की बटन को सी देते हैं और राजा को वापस देता है। राजा कहता है इतने इसके कितने दाम हुए? तो अब ये सोच में पड़ जाता है। पहले तो कहता है कि नहीं नहीं ये तो बस दो मिनट का काम था, इसमें दाम कैसे? राजा कहता है नहीं, दाम कुछ तो लेना पड़ेगा। तो दर्जी सोचने लगता है कितना मांगू, एक रुपया मांगू या दो रुपया मांगू। अंदर ही अंदर सोचने लगता है कितना मांगा जाए। सोचता है अगर दो रुपया मांग लू तो राजा कहेगा मेरे से ही दो रुपया लेता है, कहानी पुरानी है उस जमाने की, तब दो रुपया बड़े थे। तो वो सोचता है अगर मैं ये दो रुपया मांगू तो राजा सोचेगा मेरे से ही दो रुपया लेता है, तो सामान्य लोगों से कितना लेता होगा ये। तो कहता है राजा से कि छोड़ो, आपको जो भी मर्जी है, जितना भी आप देना चाहो दे दो। अब राजा सोच में पड़ जाता है कितना दूं, पोजीशन का सवाल है। राजा कहता है अपने मंत्री से कि इस दर्जी को दो गांव दान में दे दो। क्या कहता है राजा? इस दर्जी को दो गांव दे दो। दर्जी ने तो कभी सोचा भी नहीं था, वो तो दो रुपया सोच रहा था, पर जब उसने छोड़ दिया राजा पर, तब राजा ने जो दिया वो बहुत ज्यादा था। जब उसने अपनी इच्छा और सब कुछ सौंप दिया, अर्पण कर दिया उस राजा पर, तो राजा ने उसे भरपूर कर दिया, मालामाल कर दिया। समर्पण एक अग्निपथ, इस विषय पर हम अभी चर्चा करेंगे। उसने मांगा नहीं, मांगता तो शायद राजा इतना न देता। क्या किया उसने? सौंप दिया, जो तेरी मर्जी, जो तुझे अच्छा लगे। ऐसा समर्पण रामायण में लिखा है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। जैसा वो रखे, जहां वो रखे, जिस परिस्थिति में वो रखे, और जो भी हो रहा है उसका संपूर्ण स्वीकार्य, होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। क्यों तर्क वितर्क कर रहे हो, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, होई सोई जो राम रचि राखा। ऐसा समर्पण भाव हम देते हैं इतना, और प्राप्ति है बहुत अधिक। तो इस जीवन में जब भी आत्मा इस महान यज्ञ की वेदी पर अपने जीवन को, अपने अहम को और अपने यौवन को समर्पित करती है और अपना सर्वस्व समर्पित करती है, तो महानता उसमें स्वतः ही आने लगती है, दिव्यता उसमें स्वतः ही संचारित होती है। जिस जिसने स्वयं को यज्ञ की वेदी पर स्वाहा किया, वो सभी साधारण आत्माएं नहीं है। जैसे हम स्वयं के लिए कह रहे हैं और ये मेरा स्वमान है कि मैं महान आत्मा हूं, उसी तरह ये सभी भी महान आत्माएं हैं। तो समर्पण एक अग्नि पथ है, सिक सिक, झुक झुक और मरमर, प्रतिपल परीक्षा है, प्रतिपल सहन करना है। तो ऐसे हम आठ प्रकार के समर्पण की चर्चा करेंगे। अष्ट समर्पण, सबसे पहला तन, बॉडी, शरीर, काया, यह कलेवर सबसे पहला समर्पण है, इस देह का समर्पण। जब देह इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा किया है, तो फिर संसार के भोग विलास, संसार की दैहिक तृष्णाएं और वासनाएं की पूर्ति के लिए यह देह नहीं है। इस देह की संभाल जरूर करनी है, क्योंकि इसी देह में रहते हमें सेवा करनी है, परंतु यदि यह देह देने के बाद भी उस देह में ही आसक्ति है, उस देह के भोग और विलास में ही सारा जीवन व्यतीत हो रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं गलती है। देह किस लिए दिया गया है? सबसे पहले तो उसका गहराई से चिंतन आवश्यक है, और जो देह मुझे मिला है वो मैंने स्वाहा किया है। अब ये देह किसी और के लिए नहीं है, इस देह को केवल और केवल ईश्वर और ईश्वरीय कार्य के प्रति समर्पित किया है। जैन धर्म में एक सुंदर कहानी आती है, राथनेमी और अरिथनेमी की। दो भाई होते हैं, एक का नाम होता है राथनेमी, एक का नाम होता है अरिथनेमी। अरिथनेमी जो होता है वो वैरागी स्वभाव का होता है, तपस्वी होता है, और राथनेमी जो होता है वो भोगी और विलासी होता है। कहानी में दिखाया है कि वहां पर एक स्त्री है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, उस स्त्री को बहुत प्रेम है अरिथनेमी से, जो कि वैरागी है, तपस्वी है, बार बार उसके पास जाती है, परंतु हर बार उससे कहती है कि मुझसे विवाह करो, परंतु वो अपनी वैराग और अपनी तपस्या में मगन है, उसे कोई लेना देना नहीं है इस स्त्री से। और जब राथनेमी को यह पता चलता है, सोचता है अच्छा अवसर है, क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं, क्योंकि उसके भाई ने तो रिजेक्ट कर दिया है। तो वो अपनी दासी को उसके पास भेजता है और दासी से कहता है कि मेरी बहुत महिमा करना उसके सामने, कितना शूरवीर है, कितना पराक्रमी है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, तो दासी जाती है और उसकी प्रशंसा करती है, परंतु वो जो स्त्री होती है, जो रानी होती है, रानी अर्थात राजकन्या, वो समझ लेती है, तो वो उस दासी के पास एक संदेश भेजती है कि आज रात को उसको मेरे पास भेज देना मिलने के लिए। परंतु ये एक प्याला है जिसमें जल है, वो लेके जाना और उसको कहना कि ये ले आना, ये मदिरा है, उसको कहना वो ले आना। तो जब उसको ये खबर मिलती है वो खुश हो जाता है, उसको लगता है शायद ये राजकन्या मान गई है, और वो आता है। दोनों की बातें चलती है घंटों, और बाद में फिर वो जाम निकालने को कहती है उससे, और रानी क्या करती है, वो राजकन्या उसका वो प्याला लेती है और ऐसे करती है जैसे वो पी रही है, पर पीते पीते ही उल्टी कर देती है उस प्याले में जो कि उसका था, और उसके सामने ही उसमें उल्टी करती है और फिर उसको देती है पीने के लिए। वो कहता है ये कैसी अभद्रता है, मुझे आपने क्या समझ रखा है, मैं इतना शूरवीर, इतना बड़ा राजा हूं और मुझे आप ये उल्टी किया हुआ दे रहे हो। वो कहती है उल्टी कहां की, ये मेरे पेट तक अंदर गया ही नहीं, बाहर ही था पानी, बाहर ही जो था वो थोड़ा पीती है पहले और फिर उल्टी कर देती है, वो तो मेरे केवल यहां तक था और मैंने उसे उल्टी कर दी। वो उससे कहती है कि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो ये क्या मेरी उल्टी भी ले नहीं सकते। वो कहता है इसका क्या मतलब है, जैन धर्म की कहानी है, थोड़ी अलग प्रकार की कहानी है। वो कहती है मैं तुम्हारे भाई के द्वारा अस्वीकार्य हो चुकी हूं, उसने पहले ही मुझे फेंक दिया है और तुम उसी को लेना चाहते हो। क्या तुम्हारा केवल इस देह में ही आकर्षण है, दिखाया है जैन धर्म के सन्यास की यह कहानी है जो राथनेमी होता है राजा, एकदम से प्रकाश आ जाता है ये मैं क्या कर रहा था, किस सौंदर्य की ओर आकर्षित हो रहा था, ये देह क्या है, झूठन के झूठन के झूठन का झूठा, आत्मा ने कितने देह बदले हैं, ये देह झूठा है, एक बार का झूठा नहीं है, कई बार झूठा हो चुका है, ये वो देह है और इसको मैं ग्रहण कर रहा था, इसके सौंदर्य की तरफ मैं आकर्षित हो रहा था। तुरंत तीव्र वैराग जागता है और दिखाया है वो संसार छोड़कर चला जाता है। ये कहानी तब दिखाई जाती है वो सारी जैन धर्म की साध्वियां जिनके वजह से पुरुषों को वैराग आया। बहुत बड़ी, बहुत सारी भिन्न भिन्न कहानियां हैं जहां पर स्त्री की वजह से पुरुष को वैराग आया, और वो स्त्री भी कोई साधारण स्त्रिया नहीं थी, उस धर्म की महान जैसे तपस्विनियों में से थी, उसमें ये कहानी सुनाई जाती है। तो ये देह जो है एक बार दे दिया है तो किसी और का ये नहीं हो सकता, भोग और विलास के लिए नहीं है, तप के लिए है, साधना के लिए है, तपस्या के लिए मिला है यह देह, इसको तपाना है, इसी में बैठकर आत्मा तपस्या करेगी। तो सबसे बड़ा समर्पण तो सबसे पहले देह का है, और इस देह के समर्पण में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ेगा, शरीर में कमजोरी आएगी, शरीर में बीमारी आएगी, व्याधि, अस्वस्थता, बेचैनी, बहुत कुछ होगा, वातावरण का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, बहुत गर्मी, बहुत ठंड, परंतु फिर भी इस देह को केवल और केवल उस ईश्वरीय कार्य में अर्पण करना है, और उस ईश्वरीय कार्य में इस देह की वजह से भी कोई बाधा ना हो, हमारी देह की वजह से, और हमारी देह की वजह से किसी और की दृष्टि भी चंचल ना हो। यदि हो रही है तो किसका दोष है, उस व्यक्ति का या हमारा? कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारा। वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस को कैच करता है। विनोबा भावे ने अपने जीवन में एक संस्मरण लिखा है कि वो एक ट्रेन से गुजर रहे थे, देखा कि एक स्त्री बैठी है, वो गजरा लगाए हुए है। गजरा पता है ना, फूलों का। वो उससे पूछते हैं, क्या ये गजरा तुम्हें दिखाई दे रहा है? वो कहती, नहीं। तो क्यों लगाया है? जो गजरा है पीछे वो दिखाई दे रहा है क्या? वो कहते, नहीं। तो लगाया किस लिए? ध्यान आकर्षित करने के लिए। हमने आत्मा में कहीं ऐसा कोई गजरा तो नहीं लगा रखा है? शरीर में नहीं, आत्मा में, भावों में, फीलिंग्स में, भावना में, कल्पना में, स्मृति में, जो किसी को आकर्षित करे, जो किसी की दृष्टि को हमारी ओर खींचे, जो किसी की पवित्रता को या ब्रह्मचर्य को भंग करे। तो पहला समर्पण है देह। व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है? यह सोच कि मैं बहुत सुंदर हूं आत्मा तक पहुंचेगी और खींचेगी आत्मा को अपनी ओर। यह संकल्प कि मेरी देह सुंदर है, या मैं सुंदर हूं, या फिर मैं अच्छी बोलती हूं, या मेरा स्वभाव अच्छा है, या मैं बहुत मीठी हूं, यह संकल्प रस्सी को खींचेगा। देह उसका है, किसी भी पुरुष का नहीं। पहला। दूसरा है मन। मन का समर्पण, वो तो बहुत सूक्ष्म है। मन के संकल्पों का समर्पण, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, एक एक संकल्प का बाप को क्या करो, क्या करो, कौन बताएगा? एक एक संकल्प का बाप को भोग लगाओ। कितनी ऊंची अवस्था है। एक एक संकल्प का बाप को क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसकी? कल की अव्यक्त वाणी, वैष्णव का उदाहरण दिया है, शूद्र चीजों को स्वीकार नहीं करते। रॉयल बच्चों का उदाहरण दिया है, रॉयल बच्चे जो होते नीचे गिरी हुई चीज नहीं उठाते। तीसरा उदाहरण दिया है कि जो अज्ञानी आते हैं उनको क्या कहते हो? ये वस्तुएं निषेध है, निषेध, प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड। एक सुंदर महावाक्य है, छोटा सा, पर सभी अपने डायरी में नोट करके रखो, बाबा ने मना किया है, फुल स्टॉप। बाबा ने मना किया है। बहुत बल है इस वाक्य में, शक्ति भर देगा, रोक देगा अगर विकर्म होने वाला हो तो। संकल्प जो बह जा रहे हैं, कल्पना का जो प्रवाह है, भावनाएं जो उमड़ रही है, उसको रोकने का सामर्थ्य है एक वाक्य में, बाबा ने मना किया है। है। मन कहाँ जा रहा है? किसी की ओर, व्यक्ति की ओर, वस्तुओं की ओर? क्या विकार इतने प्यारे हैं जो कहते हो ख्याल करेंगे? परसों की मुरली क्या पूछा बाबा ने? क्या विकार इतने प्यारे हैं जो कहते हो ख्याल करेंगे? छोड़ने का पॉइजन कहाँ? तो मन कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, किस किस की ओर जा रहा है? आज का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई ऐसा हो तो मन बुद्धि एकाग्र, ऐसा अगर न हो, किसी में लगाव हो तो मन दौड़ेगा, मन भागेगा, बुद्धि भटकेगी, विचलित करेगी। कट कर देना है, बाबा ने मना किया है, निषेध है, नॉट अलाउड। मन को केवल उस एक में लगाने का अभ्यास, मन को केवल उसी एक के प्रति समर्पण, एक की याद, एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व प्राप्ति, एक की लगन, एक ही सर्वस्व। आज की मुरली में सुंदर महावाक्य है सुबह की, एक बाप में ही सब कुछ समाया है, एक बाप में ही सब कुछ सर्व प्राप्तियां, सारी मदद, सारी गाइडेंस, सारा सपोर्ट, सारा बल, सारी हिम्मत, सारी शक्ति, सब कुछ। किसी और की आवश्यकता नहीं है, एडिशन हो जाए जो, यही संपूर्ण है। मन, तन, मन, तीसरा धन। जो भी दिया है बाबा ने, ये सर्वत्र जो कुछ है, यहां पर, यहां की ये सारी वस्तुएं किसकी है? उसकी। आज है, कल नहीं भी रहेगी। जिसने दिया है वो छीन भी सकता है, इसको भूलना नहीं है। कुंती इतनी रोती है, इतनी रोती है, महाभारत के युद्ध के बाद आंसू उसके रुक नहीं रहे। श्री कृष्ण को कहती है, ये तुमने क्या कर दिया, कोई नहीं बचा युद्ध में, सब मर गए, पांच पांडवों के अतिरिक्त। क्या ये देखने के लिए युद्ध किया था? जो मरे वो भी तो मेरे ही थे। आर्तनाद, अथार रोना चालू है कुंती का। कृष्ण कहता है, वो कृष्ण से कहती है, तुम चाहो तो रोक सकते थे। कृष्ण कहता है, अगर तुम कहो तो फिर से सबको जीवित कर देता हूं। वो कहती है, अभी रहने दो, अगर तुम सबको जीवित कर सकते हो, इसका मतलब जो हुआ वो भी तुम्हारी इच्छा से हुआ है। जिसमें इतना सामर्थ्य है वो रोक भी सकता था, परंतु फिर भी हुआ, अर्थात तेरी इच्छा से हुआ है। तो जो दिया है वो उसने दिया है, और वो चाहे तो ले भी सकता है। एक सुंदर सूफी गीत है, राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है। वो सूफी संत कहता है, ए खुदा, राजी तेरी रजा में मुझे एतराज क्या है। मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, इतने बड़ी इमारत बनाई, पर तेरे पास तो बिजली है, कब तेरी बिजली आ जाए और सब कुछ नष्ट कर दे। तेरे पास बिजली आ है, मेरे पास आशियाना। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। बहुत दर्द पूर्ण भाव पूर्ण वो गीत है, सुना है किसी ने ये गीत? राजी तेरी रजा में, बहुत सुंदर गीत है। मुझे ऐतराज क्या है, सब तेरा है। Thy will shall be done, तेरी इच्छा। तूने यहां रखा तो खुश, अब तूने वहां रखा तो भी खुश। हमें याद है हम सेंटर पे गए थे एक, जिस सेंटर पर वो एक अलग एरिया में है कोकण के, महाराष्ट्र में, एकदम से शांत जगह है। और हमने देखा उस सेंटर पर दो ही स्टूडेंट है, खाली दो ही स्टूडेंट आते हैं, बैठते हैं, मुरली सुनकर जाते हैं बस। तो उस बहन से हमने पूछा कि दो ही स्टूडेंट? उसने कहा हाँ, 10 साल से दो ही स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं कर रहे, सेवा तो बहुत करते हैं, परंतु छोटा सा गांव है और वहां के जो लोग हैं सब नॉन वेजिटेरियन है, मच्छी खाने वाले। उनको पता है यहां गए तो छोड़ना पड़ता है ब्रह्मा कुमारीज में, उसकी वजह से दो ही है बस। पर हमने देखा उस बहन की स्थिति बहुत शक्तिशाली थी। तो उसने हमको कहा कि यहां आने से पहले मैं एक दूसरे सेंटर पर थी जहां पर सुबह से लेकर रात तक सेवाएं सेवा थी, दिन रात सेवाएं थी। परंतु जब से मैं यहां आई हूं, हम लोग सेवा बहुत करते हैं। और हमको याद है हम खुद उनके साथ जेल में गए थे एक सेवा करने बहुत सालों पहले वहीं के। तो उसने एक चीज हमसे कही और हमको बहुत अच्छा लगा उसका वाक्य। उसने कहा, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। सारा समय वो अव्यक्त वाणियां पढ़ने में या योग में बिताती है। बहुत अलग अलग प्रकार की उसने सेवाएं की पहले, परंतु अभी यहां है, यहां भी कर रहे, कोर्स करते हैं, पर लोग रेगुलर नहीं होते। परंतु उसकी स्थिति बहुत पावरफुल थी। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। तन मन धन जो कुछ भी है सब उसका है, हमारा कुछ भी नहीं। वो मालकियत का भाव, वो मेरेपन का भाव वस्तुओं में, छोटी छोटी वस्तुएं संभाल करना दूसरी बात है, पर मोह हो जाना, चौथा बुद्धि, चौथा समर्पण बुद्धि का समर्पण, ये उससे भी सूक्ष्म है। बुद्धि समर्पित, बुद्धि में मैं भरा हुआ है, बुद्धि में अहंकार भरा हुआ है, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, इतनी मेरी पढ़ाई है, लौकिक ज्ञान या एजुकेशन, उसका अहंकार, बुद्धि उसको दे दी। अर्थात बुद्धि में फिर जो विशेषता है, जो कला है, जो कौशल है, जो स्पेशलिटीज है, वो भी अब हमारी नहीं रही, उसको दे दी। उसको देने के बाद ही उसमें दिव्यता भरेगी। यदि हम पकड़ के रखे कि ये मेरी है और मेरी बुद्धि का इस तरह यज्ञ में उपयोग होना चाहिए, ये हम डिसाइड करने वाले नहीं है, वो डिसाइड करेगा, ये समर्पण है। समर्पण कोई समारोह नहीं है, समर्पण का संबंध किसी समारोह से नहीं है। समर्पण समारोह, समर्पण का संबंध किसी वस्त्र से नहीं है, समर्पण का संबंध किसी बैच से नहीं है, समर्पण आंतरिक स्थिति का है। समर्पण स्थिति का नाम है। बुद्धि, बुद्धि कहती है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। सूरज भाई जी एक उदाहरण देते हैं, एक काल्पनिक उदाहरण, एक बहन का जिसने बहुत सेवाएं की, देश विदेश में हजारों का कोर्स कराया, शरीर छोड़ा, बाबा के पास पहुंची। बाबा ने पूछा, बच्ची तुमने क्या क्या किया? उसने नहीं बताया, भगवान बाबा खुद पूछ रहा है कि बच्ची बताओ तुमने क्या क्या किया है। तो उसने बताना चालू किया, उसने किया, कहा बाबा मैंने हजारों लाखों का कोर्स कराया, कई सारे सेंटर्स खोले, देश और विदेश में कई आत्माओं की सेवा की। वो बता रही है परंतु खुद नहीं बता रही है, पूछा गया इसलिए उत्तर दे रही है। देश विदेश में सेवाएं किए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, मेगा प्रोग्राम किए, शिविर किए, कई सारी आत्माओं को मधुबन में लेके गई, कई सारी आत्माओं का मधुबन में आपसे मिलन कराया, सब उसने विस्तार से वो बता रही है। उसका बताना पूरा हुआ और बाबा ने एक वाक्य कहा, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? क्या कहा बाबा ने? बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? बुद्धि मैं से भर जाती है, बार बार तृप्ति होती है, उसको संतोष मिलता है, मेरा नाम, मेरा फोटो ज्ञानामृत में, किसी को कुछ देते हुए इतना बड़ा पेज, छोटे छोटे बहुत सारे, वहां मैं हूं, उस पर ध्यान जाता है। क्यों? अगर कोई एक ग्रुप फोटो दिखाया जाए, ये ग्रुप फोटो ले लिया जाए, ये मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है, उस ग्रुप फोटो दिखाने के बाद सबसे पहली नजर कहां जाती है? मैं कैसे दिख रही हूं? अगर उसमें मेरी आंखें बंद है, बताया क्यों नहीं जब फोटो निकाल रहे थे, आंखें बंद आ गई। सारा ध्यान हमारा जो है वो अपने ऊपर है, मैं इतना ऑक्यूपाइड है बुद्धि मैं से। विश्व सेवा बाद में, पहले मैं। तो बुद्धि का समर्पण तो बहुत सूक्ष्म है, तन मन धन बुद्धि, पांचवा संस्कार, ये उससे भी सूक्ष्म है। संस्कारों का समर्पण, एक आदत है जो छूट नहीं रही है, एक संस्कार है जो छूट नहीं रहा है, छूटेगा तब जब उसको भी स्वाहा किया जाएगा, परंतु वो मेरा अभिन्न अंग है, कैसे उसको स्वाहा करें? संस्कार क्रांति की आवश्यकता है, संस्कार परिवर्तन एक क्रांति है, क्रांति में विरोध चाहिए, रिवॉल्यूशन, बगावत। किसी ने एक बहुत सुंदर संदेश हमको भेजा था जिसमें लिखा था संयम अर्थात युद्ध, संयम अर्थात युद्ध अपने विरुद्ध, संयम अर्थात युद्ध अपने विरुद्ध, यह संयम की परिभाषा है। संस्कार परिवर्तन अर्थात अपने ही संस्कार से बगावत, अपने ही संस्कार से रिवॉल्ट, अपने ही संस्कार का के प्रति बागी बन जाना, विप्लव, रिवॉल्यूशन। उससे हम ऐसे जुड़े हुए एक हो गए, वो और मैं एक हूं। संस्कार परिवर्तन और संस्कार क्रांति अर्थात अलग हो जाना, जैसे 1857 की भारत में क्रांति, कैसे विरोध में हो गए सब बंदूक लेकर, जो सरकार है उसके विरोध में खड़े हो जाना, स्वयं स्वयं के विरोध में उस संस्कार के, और उसको स्वाहा कर देना। ये सूक्ष्म क्रांति है, अध्यात्म क्रांति, संस्कारों की क्रांति, संस्कारों का परिवर्तन, संस्कारों का समर्पण। कठोर साधना की आवश्यकता है। पहले तो जैसे सुबह कहा, आइडेंटिफाई करें कि ये वो संस्कार है, ये वो संस्कार है जो सबसे ज्यादा दुख देता है, हट करने का, नाराज होने का, दूसरों को डिस्टर्ब करने का, कोई भी हो सकता है, संस्कारों की बड़ी लिस्ट है, एक अपमान महसूस करने का, दादी जानकी ने एक बार कहा था अभी अभी क्लास में, ब्राह्मणों में एक शक्ति की कमी है, इंसल्ट को सहन करने की, इंसल्ट को सहन करने की शक्ति की कमी है। संस्कार, संस्कारों के बाद समय, समय का समर्पण। हमारा समय हम किस में लगा रहे हैं? व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो समय का समर्पण नहीं है। समय उसको दिया अर्थात उस समय में श्रेष्ठ कार्य हो, श्रेष्ठ चिंतन हो। ऐसे ही कल की मुरली में था ना, ऐसे ही चालू भाषा, कल रात में कुमारों की क्लासेस में इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई। ऐसे ही क्या क्या, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही टांग खींच रहे थे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, हम तो ऐसे ही थोड़ा सा टीवी देख रहे थे, हम तो ऐसे ही थोड़ा घूम रहे थे, हम तो ऐसे ही थोड़ा सा, किसी ने तो यह भी कह दिया हमने तो ऐसे ही शादी कर ली, हमने कहा यह थोड़ा ज्यादा हो गया। ऐसे ही की माया, ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, क्या कर रहे थे हम तो ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर रहे थे। ये ऐसे ही नहीं, हीरे जैसा, ऐसा नहीं हीरे जैसा, कल की मुरली में था ना। समय दर्शन, भक्तों को जो दर्शन होता है वो तुम्हारे समय का महत्व है, संकल्प का महत्व वरदान, कर्म का महत्व वो बाप ने, आप और बाप ने जो कर्म किए वो देखकर गदगद होते हैं, दृष्टि का महत्व नयनों से निहाल, संकल्प का महत्व, समय का महत्व, बोल का महत्व, बोल सुनने के लिए तड़प रहे, पांच चीजें कल बताई थी बाबा ने, तुम्हारा कितना महत्व है, तुम हीरो एक्टर हो इस स्टेज पर। समय, हर समय उसके लिए, उसके लिए अर्थात या तो सेवा के लिए, या तो योग के लिए, तपस्या के लिए, ज्ञान चिंतन के लिए और ज्ञान चर्चा के लिए। हम चाहेंगे एक बात इस भट्टी से सभी ले जाए कि अपने अपने सेंटर्स पर रात को दो लोग भी अगर है तो बैठकर ज्ञान की चर्चा करें। एक छोटा सा ग्रुप हो, ग्रुप के लिए दो लोगों की आवश्यकता है। समय निकालकर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई नहीं है, कोई कन्या है, उसके साथ बैठकर जो ज्ञान है, आज सुबह की जो मुरली थी या वरदान था या जो स्लोगन था, किसी एक पॉइंट पर उसकी चर्चा हो। जब तक इस ज्ञान की चर्चा नहीं होगी, ये ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। एक तो होता है हमने मुरली सुना दी सुबह, परंतु वो चर्चा नहीं हुई है, वो तो सुनाना हुआ, एक तरफा हुआ, यूनिलैटरल। चर्चा हो, लेन देन हो, हम कुछ पूछें और बहुत सारे प्रश्न है उसमें, उसका विस्तार हो, उसका एक्सप्लेनेशन हो अगर हो सके तो। दो बहनें हैं तो दोनों मिलके बैठे और सोने से पहले थोड़ी ज्ञान की चर्चा करें। कोई नहीं है, कुमारी है कोई, उसके साथ चर्चा करें। कोई भी नहीं है, कोई माता है, उसके साथ चर्चा करें। चलो उस माता को बहुत ही कम समझ में आता हो तो भी। हमें याद है हमारा एक छोटा सा ग्रुप हॉस्पिटल में है, तो हमारी जो ओपीडी है रात में वो ग्रुप बन जाता है, क्लासरूम बन जाती है। तो उसमें एक हॉस्पिटल में एक भाई है, एकदम अनपढ़। उसका काम है फाइल यहां से उधर, उधर से इधर, बस इसके अतिरिक्त तो उसको कुछ नहीं पता, न पढ़ना आता है न लिखना आता है। सुबह क्लास में जाता है, मुरली सुनता है, उसको पूछो कोई पॉइंट सुनाओ, एक हाथ कोई बाबा को याद करो, इतना उसको याद रहता है, बस ये पॉइंट उसको याद है। हम एक बार चर्चा कर रहे थे एक बहुत गहरे टॉपिक के ऊपर क्लास में, सबने बहुत सारी पॉइंट्स बताई, इसने बताई, उसने बताई, हमने भी बताई, और क्या हो सकता है। तो हमने पूछा चेतु भाई बताओ, तो उसने एक ऐसी पॉइंट बता दी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। और देखो वो एकदम अनपढ़। इसके लिए कहा ना, हर आत्मा विशेष है, भगवान ने उसे चुना। बाकी उसको याद कुछ भी नहीं रहता है, पढ़ना तो बिल्कुल नहीं, अंगूठा छाप। उसके पास भी एक नई पॉइंट थी, जो कि इतने जो मनीषी और जो ज्ञानविद बैठे थे उनके पास नहीं आई। तो चर्चा, तो कहां थे हम, समय। उसके बाद है कर्म और कर्म का परिणाम, सातवां। सात हो गए ना, कर्म और कर्म का परिणाम दो है, एक है कर्म का समर्पण और फिर है परिणाम। कर्म किया और अर्पित कर दिया, भक्ति में कहते हैं श्री कृष्णा अर्पणम मस्तु, कुछ भी कर्म करते कृष्ण को अर्पण कर देते, हो गया, फल की अब कामना नहीं। उससे भी सूक्ष्म जो त्याग है समर्पण, वो है उसके परिणाम का। अच्छा मिला तो खुशी होती है, बुरा हुआ तो दुख होता है। हमने बहुत बड़ी सेवा की, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, कोई भी नहीं निकला। सेवा की, प्रोग्राम किया, जिसको आना है वो आएगा, उस पर हमारा वश नहीं है। अभी इस कुल की जो आत्मा होगी वो अपने आप आएगी, उसमें फिर दुखी नहीं होना है। उसका कंपैरिजन पैसों से नहीं लगाना है, 1 लाख खर्च हुआ पर कोई भी नहीं निकला, तो कर्म और कर्म का परिणाम। और लास्ट है संबंध, संबंधों का समर्पण। यदि हमारे जो आपसी संबंध है वो हमें अर्पण करना है, तो उस संबंधों में उतनी डिटैचमेंट चाहिए, उतनी दिव्यता चाहिए, लौकिकता नहीं चाहिए। किसी को भाई नहीं बना देना जबरदस्ती, भाई तो है विशेष विशेष, ना ही किसी को बहन बना देना विशेष। वो बाजू में बैठे तो योग अच्छा लगता है, इसको क्या कहेंगे, पावरफुल स्थिति। वो मधुबन जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, वो नहीं तो मैं भी नहीं। अटैचमेंट। मधुबन में हमने एक बार एक दृश्य देखा था, दो बहनें बैठी थी डाइनिंग में, चम्मच से एक उसको खिला रही थी, एक उसको खिला रही थी। अद्भुत दृश्य था, बहुत ज्यादा प्यार। लगाओ, सूक्ष्म लगाओ, ये संबंध है, और इसको हमने अर्पण किया, अस्वीकार होगा। कल की मुरली में विकर्म की परिभाषा दी बाबा ने, पढ़ी ना सबने, पढ़ाई सबको, पढ़ी नहीं आप पढ़ाने वाले हो। विकर्म की क्या परिभाषा थी? हर वो कर्म जो विकार के अंश मात्र, विकार के अंश के वशीभूत हो किया जाता है वो विकर्म है। सुकर्म, चार प्रकार के कर्म कल बाबा ने बताया, विकर्म, सुकर्म, साधारण कर्म, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ का भी त्याग। तो ये जो संबंध हमने सजा के रखा है, संजो के रखा है, डेकोरेट किया है उसको, और ऊपर से नाम दिया है सेवा, ताकि कोई उंगली ना उठाए, सुरक्षा कवच निर्धारित किया है, सेवा का संबंध है ये, सेवा अर्थ। है मोह और संज्ञा दी है सेवा की, व्याकरण को बदलने की आवश्यकता है। संज्ञा में गलती है, नाउन है मैं, नाम दिया है सेवा, है मैं कर रही हूं और नाम दिया ब्रह्मा कुमारीस। ब्रह्मा कुमारीस के तत्ववधान में अखबारों में आता है, परंतु महिमा होनी चाहिए मेरी, नाम इसकी आड़ में मैं थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाऊं। आठ समर्पण है, पहला तन, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि, चौथा तन मन धन, चौथा बुद्धि, पांचवा संस्कार, छठवा समय, सातवा कर्म और कर्म के परिणाम। सेवा कर दी, फुल स्टॉप, जो होगा उसे स्वीकार करेंगे, और अंतिम संबंध। हमारे जो भी संबंध है, आपसी संबंध, स्टूडेंट्स के साथ संबंध, माताओं के साथ संबंध, उसमें भी क्या हो, डिटैचमेंट, उसमें एक निगेटिव पॉइंट भी है। अगर अटैचमेंट है, धोखा भी हो सकता है एक दिन। जिनकी हमने पालना की, जिनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी के द्वारा धोखा भी हो सकता है। होता है ना, होता है। जिसको हमने सब कुछ सिखाया, जिसको एंट्री दी किचन में, वही जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती है। इसके लिए उनसे भी अलर्ट, डिटैच्ड, संबंधों में भी डिटैचमेंट हो। अटैचमेंट अगर है तो दुख होगा, एक्सपेक्टेशंस होगी, गहरी पीड़ा होगी। फिर सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? कोई दुश्मन अगर धोखा दे तो दर्द होता है क्या? कब दर्द होता है फिर? जब अपने हैं, जिनको अपना माना, अपना समझा, कैसी पीड़ा होती है, किसको बताए, बताने को भी नहीं है, किसको बता भी नहीं सकते। तो उससे कुछ मांगना नहीं है, उसके लिए हम जो कुछ कर रहे हैं बहुत कम है। वो चाहे तो ये कार्य किसी और से भी करा सकता था, वो चाहे तो इस सेंटर पर किसी और को भी रख सकता था, उसने हमें रखा, ये भाग्य है। मोहम्मद रफी ने बहुत सुंदर बात कही है, उसने कहा है, अगर वो चाहता तो ये गला किसी और को भी दे सकता था। अपनी आवाज के लिए कहा है उन्होंने कि अगर खुदा चाहता तो मेरी ये जो आवाज है किसी और को भी दे सकता था वो, पर उसने मुझे दिया, ये भाग्य है। इसलिए ये अग्नि पथ भी है तो शीतल पथ भी है। ऐसा संपूर्ण समर्पण। ओम शांति।